नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम पूज्य गुरुदेव के विचारों की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने है उनकी एक महत्वपूर्ण रचना का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है ईश्वरीय शासन से धर्म रक्षा। और इसका उद्देश्य ये समझना है कि धर्म और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक उच्च सत्ता, या कहिए कि ईश्वरीय शासन की जरूरत क्यों महसूस की गई।
बिल्कुल, ये अध्याय असल में एक तरह से आत्मनिरीक्षण का अवसर है। ये समझने का प्रयास है कि कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है, जिससे परिवार सुसंस्कृत बने और समाज संपन्न हो सके।
तो चलिए इस विचार यात्रा की शुरुआत करते हैं।
ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है कि धर्म के अभाव में अव्यवस्था फैल जाती है। समाज को चलाने के लिए संगठन, निरीक्षण और अनुशासन, ये सब तो आवश्यक हैं ही, और पूज्य गुरुदेव इसे सीधे मनुष्य के स्वभाव से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य क्रम से उन्नति करके सुसंस्कृत और सामाजिक प्राणी तो बन जाता है, लेकिन उसकी जो पार्श्विक वृत्तियां हैं, मतलब पशु जैसी आदतें, वो समाप्त नहीं होती।
हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, एक घोड़े का, कि अगर एक घोड़े को खुली छूट मिल जाए और उस पर नियंत्रण का डर ना हो, तो वो सुंदर बगीचे में रहने की बजाय वापस अपने पुराने गंदे अस्तबल की ओर भागता है।
ये मनुष्य के स्वभाव का, आप कहिए तो, एक सटीक चित्रण है। स्वच्छंदता या अनियंत्रित आज़ादी मिलते ही मनुष्य अपनी पार्श्विक वृत्तियों की ओर लौटता है। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपना स्वार्थ बन जाता है। उसे फिर विनय, शास्त्र चर्चा या उपदेश, इन सब से नियंत्रित करना संभव नहीं होता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी स्थिति में केवल एक ही व्यावहारिक गुरु काम आता है,
डंडा।
डंडा यानी दंड का भाई।
तो इसका मतलब है कि ये वृत्तियां बहुत गहरी हैं, यहां तक कि मतलब विश्वामित्र और व्यास जैसे महान ऋषियों का भी उदाहरण दिया गया है, जो सुंदर स्त्रियों को देखकर अपने ब्रह्मचर्य पर स्थिर नहीं रह सके।
बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल उठाया गया है। यदि किसी को रास्ते में धन मिल जाए, तो धर्म पूर्वक उसे राजकीय कोष में जमा करने का व्यवहार कितने लोग करते हैं?
बहुत कम।
यहीं से यह कड़वा सत्य सामने आता है कि स्वच्छंदता प्राप्त होते ही मनुष्य अपनी पार्श्विक वृत्तियों की ओर लौट पड़ता है। स्वार्थ ही उसका प्रधान उद्देश्य बन जाता है।
और अगर इस स्वार्थ को समाज में बिना रोक टोक के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा?
परिणाम भयानक होंगे। पूज्य गुरुदेव प्रकृति का उदाहरण देते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सर्पिणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही बच्चों को खा जाती है।
बापरे।
यदि यही निरंकुश व्यवस्था मानव जाति में आ गई, तो हमारी सामाजिकता नष्ट हो जाएगी और हम आदिम युग की बर्बरता में लौट जाएंगे, जहां लोग जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ते थे।
यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? अगर शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन जीना है, तो इन पार्श्विक वृत्तियों और निजी स्वार्थ पर नियंत्रण तो आवश्यक है।
और यहीं पर ईश्वरवाद की अवधारणा सामने आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी ने वेदों का आरंभ भी इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए किया।
अच्छा।
हाँ, वेदों में ईश्वर की प्रशंसा है, जो मनुष्यों को जन्म देता है, पालता है, मारता है, स्वर्ग नरक देता है और हमारे सभी गुप्त प्रकट कर्मों को देखता है।
तो ईश्वरवाद एक तरह से मनुष्य के मन पर एक अदृश्य शासन, एक इंटरनल गवर्नमेंट स्थापित करने की व्यवस्था थी, उस समय में जब कोई सामाजिक या सरकारी व्यवस्था नहीं थी।
बिल्कुल, ये एक बहुत उपयोगी सिद्धांत था। जो आस्तिक थे, यानी जो इसमें विश्वास करते थे, वे अपने ऊपर एक शक्तिशाली शासन की व्यवस्था को स्वीकार कर लेते थे। बाद में धर्मशास्त्र के निर्माता मनु ने इन्हीं वैदिक सिद्धांतों को और स्पष्ट किया। उन्होंने मनुष्य की उन आदतों को, जो कई जन्मों से चली आ रही थीं, अधर्म या पाप ठहराया।
जैसे कि चोरी मत करो, ये धर्मशास्त्र की एक बड़ी घोषणा बन गई।
हाँ, और केवल चोरी ही नहीं, उस समय पशुओं की तरह पति पत्नी के संबंध में भी कोई नियम नहीं था।
अच्छा।
इससे पारिवारिक जीवन में बहुत गड़बड़ी होती थी। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यभिचार पाप है का सिद्धांत स्थापित किया गया। इसी प्रकार झूठ, हिंसा, कठोर वचन, क्रोध, लोभ, ऐसी अनेक बातों को पाप घोषित किया गया।
तो पाप का अर्थ हुआ त्यागने योग्य कर्म, निंदित कर्म, और ये सब कर्म असल में मनुष्य की गहरी पार्श्विक वृत्तियां ही हैं।
सही पकड़ा आपने। धर्मशास्त्रों का मुख्य प्रयोजन ही यही है कि लोग अपने स्वार्थ और अपनी लालसाओं को दबाएं, ताकि समाज में सुख शांति बनी रह सके। प्राचीन व्यवस्थाकार जानते थे कि बिना किसी कठोर नियंत्रण के वासनाओं के सामने धर्म ग्रंथ हवा में पत्तों की तरह उड़ जाएंगे।
तो फिर ये कठोर नियंत्रण काम कैसे करता है? इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है?
इसमें जो फैसिनेटिंग बात है वो ये कि पूज्य गुरुदेव दो मुख्य मनोवैज्ञानिक उपकरणों की बात करते हैं, लोभ और भय,
ग्रीड एंड फियर।
ग्रीड एंड फियर। वे कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो थोड़े में संतोष कर लें, इसलिए शासन करने के लिए दंड यानी भय और लोभ यानी लालच ही संभव उपाय हैं।
फिर से एक पशु का उदाहरण है ना, कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो उसके मुंह के आगे दाना रख कर लालच दो, या फिर पीछे से लाठी मारकर चलाओ, द कैरेट एंड द स्टिक।
बिल्कुल, और मनुष्य पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। इन्हीं मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझकर ब्रह्मा जी ने ईश्वरवाद की स्थापना के लिए वेदों की रचना की। स्वर्ग का लोभ और नरक का भय।
अच्छा,
यही वो दो रास्ते थे जिनसे मनुष्य को नियंत्रण में बांध कर रखा जा सके।
तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस चर्चा से ये तो स्पष्ट होता है कि मानव स्वभाव में स्वार्थ और स्वच्छंदता की एक गहरी प्रवृत्ति है, और समाज को अव्यवस्था से बचाने के लिए एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक शासन तंत्र की कल्पना की गई, जिसे ईश्वरवाद कहा गया।
हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमारे पास बाहरी नियंत्रण के लिए कानून है, पुलिस है, अदालतें हैं, लेकिन ये चर्चा इस ओर इशारा करती है कि सबसे प्रभावी शासन शायद एक आंतरिक नैतिक दिशा निर्देशक है,
एक इंटरनल मॉरल कंपास।
बिल्कुल, एक उच्च सिद्धांत के प्रति जवाबदेही का भाव, चाहे उसे ईश्वर कहें या अंतरात्मा।
और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, आज की दुनिया में जहाँ बाहरी नियंत्रण हर जगह मौजूद है, हमारे निजी जीवन में इस आंतरिक ईश्वरीय शासन की क्या भूमिका है? हम उस आंतरिक अनुशासन को कैसे विकसित कर सकते हैं जिसके बिना, जैसा कि पूज्य गुरुदेव संकेत देते हैं, शायद सारी बाहरी व्यवस्थाएं अंततः कमजोर साबित हो सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।